आज हम अपने अध्ययन के लिए कुलुसियों के अध्याय एक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कुलुसिया नगर आसिया माइनर के फ्रुगिया क्षेत्र में स्थित था। इस पत्र में पौलुस ने अन्य दो कलीसियों को भी अभिवादन भेजा था और निर्देश दिया था कि यह पत्र उन कलीसियाओं में भी पढ़ा जाए। ये कलीसियाएं लौदीकिया तथा हियरापुलिस की कलीसियाएं थी। पौलुस न तो व्यक्तिगत रूप से इन कलीसियाओं में गया था और न ही इन कलीसियाओं ने कभी उसका चेहरा देखा था। ये कलीसियाएं एफेसुस में पौलुस के सेवा कार्य के फलस्वरूप अस्तित्व में आई थी। पौलुस ने एफेसुस में दो वर्ष प्रचार कार्य किया था। एफेसुस नगर कुलुसिया और लौदीकिया से अधिक दूर नहीं था। इन क्षेत्रों से अनेक व्यक्ति पौलुस के प्रचार को सुनने एफेसुस आते थे और इस प्रकार परमेश्वर का वचन एफेसुस से होकर उस संपूर्ण क्षेत्र में फैल रहा था। इस प्रकार संभव है कि लौदीकिया और हियरापुलिस की इन नए मसीही विश्वासियों ने अपने अपने निवास स्थान पहुंचने के पश्चात वहां संगति आरंभ की, जो धीरे धीरे कलीसिया में विकसित हो गई। इपफ्रास कुलुसिया की कलीसिया का पास्टर था। यही इपफ्रास पौलुस के पास रोम में आया था जब वह वहां बंदी था और उसे कुलुसी में फैल रही भ्रम की शिक्षाओं की सूचना दी। इसलिए पौलुस ने उस समुदाय में फैल रही भ्रम की शिक्षाओं को सुधारने के लिए इस पत्र को लिखा। इस भ्रम की शिक्षाओं में प्रमुख ग्नोस्टिसिज्म की शिक्षा थी, जिसमें मसीह यीशु के परमेश्वर होने का खंडन किया गया था। दूसरी शिक्षा यहूदी मत की थी, जिसके अनुसार उद्धार के लिए विश्वास के साथ कर्मों का होना भी आवश्यक था। यह पत्र और एफेसुस की कलीसिया के नाम का पत्र दोनों एक ही समय में लिखे गए थे। एफेसुस तथा कुलुसिया की कलीसियाओं को लिखे इन दोनों पत्रों को तुकिकुस रोम से लाया था, जहां पहली बार पौलुस को सन 64 में बंदी बनाकर लाया गया था। अब पहली आयत। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुसी में रहते हैं। यहां हम देखते हैं कि यह अभिवादन पौलुस अपने खास अंदाज में लिखता है, जिसे हम पौलुस द्वारा विभिन्न कलीसियाओं को लिखे पत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। अब क्योंकि पौलुस गलत उपदेशों का खंडन करना चाहता है, वह यहां मसीह यीशु के प्रेरित होने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है और अपने प्रेरित होने के अधिकार से लिख रहा है कि वह परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। एक बार फिर पौलुस कहता है कि सब प्रेरित नहीं होते, सब भविष्यद्वक्ता नहीं होते, सब सुसमाचार प्रचारक नहीं होते, सब पास्टर नहीं होते और सब शिक्षक भी नहीं होते हैं। परमेश्वर मनुष्यों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से बुलाता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, अर्थात आपके पास जो भी परमेश्वर का दिया हुआ वरदान हो, उसके द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करें। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुलुसिया की कलीसिया के लिए पौलुस की प्रार्थना में पहला निवेदन यह है कि वे परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं। आप में से कितने हैं जो ये सोचते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है? मैं तो अपने लिए सदैव यही प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर कि प्रत्येक परिस्थिति में मैं तेरी इच्छा जान पाऊं। और मेरा यह विश्वास है कि हम प्रतिदिन अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए मसीह यीशु की प्रभुता के प्रति समर्पित रहें। मेरा यह विश्वास है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा का वास्तविक प्रदर्शन बन जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि यदि मैं सुबह यह कहूं, प्रभु, मेरा जीवन तेरा है और आज मैं तेरा सेवक बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तू अपनी आत्मा के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कर, मैं चाहता हूं कि तू मेरे गलत निर्णयों का निवारण कर, और बस प्रभु, मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में रख। इस प्रकार यदि मैं अपने आप को प्रभु को सौंप देता हूं, तो जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, मेरा जीवन परमेश्वर के उद्देश्य और योजना का प्रत्यक्ष प्रदर्शन बनता जाता है। अब समस्या ये होती है कि परमेश्वर मेरी दिनचर्या की सूची तैयार करके मुझे नहीं देता कि मुझे 9 बजे क्या करना है, 10:30 बजे कहाँ जाना है और 11 बजे लौटने के बाद किससे मिलना है, ताकि सुबह उठकर मैं ये कह सकूं, ठीक है प्रभु, जो कुछ तूने दिखाया आज मैं उसे दिन भर करूंगा। परंतु एक दिलचस्प बात है कि परमेश्वर आपको तब तक दूसरा कदम नहीं दिखाता जब तक कि आप पहला कदम नहीं रख लेते। परमेश्वर ने फिलिप्पुस से कहा, गाजा को जा, और वो गया। उसने यह भी कहा कि वह रेगिस्तान है, परंतु पहले से वो जानता था। उसके अनेक कार्य थे जो उसे गाजा जाने में बाधक हो सकते थे, क्योंकि वह रेगिस्तानी क्षेत्र था और सामरिया में वह आत्मिक जागरण में व्यस्त था, जहां सैकड़ों व्यक्ति मसीह यीशु में विश्वास ला रहे थे और अनेक चमत्कार हो रहे थे। परंतु परमेश्वर उसे इस प्रभावी सुसमाचार प्रचार अभियान से निकालकर रेगिस्तान में ले जाना चाहता था। वह चाहता तो सामरिया में ही रुका रहता और कह देता, ओ प्रभु, अभी रहने दो, क्या तू यहां होने वाले काम नहीं देख रहा? तू मुझे गाजा क्यों भेजना चाहता है? इस प्रकार वह वहां रुककर गाजा न जाने के लिए प्रभु से वाद विवाद कर सकता था और अनेक बहाने बना सकता था। वह यह भी कह सकता था कि यह प्रभु नहीं हो सकता जो मुझे ऐसा आदेश देता है। वह तो एक रेगिस्तानी क्षेत्र है और निश्चय ही प्रभु चाहेगा कि मैं वहां उपस्थित रहूं जहां प्रभावी कार्य हो रहा है, इसलिए प्रभु नहीं हो सकता। परंतु यदि वह गाजा नहीं जाता तो उसे दूसरा आदेश प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार आप स्वयं देखेंगे कि हमारी समस्या यह है कि हम सदैव प्रथम आदेश का पालन नहीं करते और परिणाम स्वरूप हमें दूसरा आदेश प्राप्त नहीं होता। जब तक पहले आदेश का पालन न किया जाए तब तक दूसरा आदेश प्राप्त नहीं होता है, गाजा को जा। और जब वह गाजा को गया तो उसने एक रथ देखा जो कूश अर्थात इथियोपिया जा रहा था। तब प्रभु ने उससे कहा, रथ के साथ हो ले। यह दूसरा आदेश था। और इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा उस पर एक के बाद एक प्रकट होती गई। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि परमेश्वर एक के बाद एक आदेश देता है। पौलुस, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह का प्रेरित है, मैं जो भी हूं परमेश्वर की इच्छा से हूं। तिमुथियुस को पौलुस प्रभु में अपना प्रिय पुत्र कहता है। वो पौलुस का साथी था। संभवतः पुत्र का अर्थ कोई समझ नहीं पाए, परंतु पौलुस और तिमुथियुस ने पिता और पुत्र का सा तालमेल बनाया हुआ था। फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस ने लिखा, मैं तुम्हारा समाचार लेने तिमुथियुस को भेज रहा हूं, क्योंकि सुसमाचार के विषय में मेरे साथ तिमुथियुस के अतिरिक्त कोई और एकमत नहीं है। प्रभु के ज्ञान एवं सेवा के समर्पण में उसने पौलुस के मन को जीत लिया था। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को खोज पाना अत्यधिक कठिन होता है जिनमें प्रभु की सेवा के निमित्त आपके जैसा ही दर्शन और आपके जैसा ही समर्पण हो। यह पत्र पौलुस कुलुसी के उन पवित्र जनों को लिख रहा है जो चुने हुए एवं मसीह में विश्वास योग्य भाई है। यहां ध्यान दीजिए कि कलीसिया में झूठी शिक्षाएं प्रवेश कर रही थी और पौलुस इन झूठी शिक्षाओं के सुधार हेतु ये पत्र लिख रहा है, परंतु वह उन्हें सर्वप्रथम पवित्र जन कहता है, फिर विश्वास योग्य भाई कहता है और तब अपना विशेष संबोधन मसीह में प्रयोग करता है। दूसरी आयत में लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस अपने प्रत्येक पत्र में पाठकों के लिए अपनी प्रार्थनाओं का उल्लेख करता है और कहता है, परमेश्वर मेरा गवाह है। वह रोमियो की कलीसिया को लिखता है कि वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अपनी प्रार्थनाओं में उनका उल्लेख करता है। वह इफिसियों की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में भी दो बार प्रार्थना करता है। वह अपने अन्य पत्रों में भी अपनी प्रार्थनाओं का उल्लेख करता है। पौलुस एक प्रार्थनाशील व्यक्ति था। परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य रूप में उपयोग में लाए जाने वाले प्रत्येक जन के साथ ये सत्य है कि वे प्रार्थनाशील होते हैं। चौथी आयत, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। यहां एक बार और देखने को मिलता है कि विश्वास, आशा और प्रेम तीनों साथ साथ रखे गए हैं। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे अपनी पहली पत्री में भी यही उल्लेख करता है, विश्वास, आशा और प्रेम स्थायी हैं। ये वे गुण हैं जो एक विश्वासी में होने आवश्यक हैं, अर्थात उनका विश्वास, उनका प्रेम तथा उनकी आशा। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो परमेश्वर के पुत्र होने के संकेत हैं। इसलिए पौलुस लिखता है, मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास और सब पवित्र लोगों से प्रेम और आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। इफिसुस की कलीसिया के लिए पौलुस की एक प्रार्थना यह थी कि वे जान ले कि उनके बुलाए जाने की आशा क्या है। यदि आप भी अब तक ये जान गए होते कि आपके लिए स्वर्ग में क्या है, तो आप निश्चय ही पत्रस के इस आदेश का पालन करते कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उसके उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। यह आयत पहला पत्रस के प्रथम अध्याय के तीसरी आयत में पाई जाती है। यह उस महिमा में राज्य की अर्थात मसीह यीशु के राज्य की आशा है। इस प्रकार वह आशा जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी थी वो तुम्हारे पास आ गई, अर्थात सुसमाचार का सत्य वचन तुम्हारे पास आ गया, वरन संपूर्ण संसार में आ गया। यह दिलचस्प बात है कि पौलुस घोषणा करता है कि उस समय सुसमाचार सारे जगत में पहुंच गया, बिना वायुयानों के, बिना सैटेलाइट टीवी के, बिना रेडियो के। आरंभिक कलीसिया सुसमाचार को संसार में फैलाने में सक्षम रही। उन्होंने मसीह यीशु के दिए आदेश का पालन किया, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और यहां पौलुस घोषणा करता है कि यह कार्य पूरा हो गया है। मसीह यीशु के स्वर्गारोहण के अभी मात्र 32 वर्ष ही हुए थे कि यह कार्य पूरा हो गया। इस समय न तो किसी आराधनालय का निर्माण किया गया था, न ही किसी सेमिनारी की स्थापना की गई थी, न ही कोई कार्यक्रम थे। तो फिर यह कार्य कैसे किया गया? ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा किया गया था। और ये सत्य है कि उस युग में सुसमाचार प्रचार के लिए कलीसिया पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर निर्भर रहती थी। मैं उनके साथ कदापि सहमत नहीं होता जो कहते हैं कि आरंभ में कलीसिया को पवित्र आत्मा प्रदान किया गया था कि विश्वासी सक्रिय हो जाएं, और जब वे एक बार सक्रिय हो गए तो फिर उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा वापस ले ली और अब विश्वासी अपनी क्षमता में प्रचार कार्य आगे बढ़ाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि विश्वासी अब अपनी बुद्धि के आधार पर और अपनी सेमिनारी के अनुसार प्रचार करेंगे। परंतु आज हमारे पास ये सब होते हुए भी हम संपूर्ण जगत में सुसमाचार प्रचार करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज मसीह यीशु को जानने वालों की संख्या आज से 30 वर्ष पूर्व के विश्वासियों की तुलना में औसतन बहुत कम है। सत्य तो यह है कि संसार में जनसंख्या वृद्धि और सुसमाचार प्रचार को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यदि यही हाल रहा तो सन 2021 में विश्व की कुल जनसंख्या के केवल 5% लोगों ने ही सुसमाचार सुना होगा। सेमिनारी, रेडियो एवं टीवी कार्यक्रम, ज्ञान एवं साधन तथा योजनाएं एवं विविध प्रचार प्रणालियां आदि होते हुए भी कलीसिया दोषी ही ठहराई जाएगी। इसका अर्थ स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य एवं क्षमता की बहुत जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया द्वारा इस पीढ़ी को सुसमाचार पहुंचाने के कार्य में एकमात्र आशा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तथा उसका मार्गदर्शन है। मेरे विचार में यह कार्य केवल मानवीय साधनों से संभव नहीं है, और मेरे विचारों में परमेश्वर चाहता भी नहीं कि हम ऐसा करें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कलीसिया संसार में मसीह की गवाह तब ही बन सकती है जब वो प्रार्थना और आत्मा के मार्गदर्शन में रहे, क्योंकि लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और इस प्रकार के गवाह बनने के लिए हमें जिस सामर्थ की आवश्यकता है वह है पवित्र आत्मा का सामर्थ। और यदि हम उसका इनकार एवं तिरस्कार करें तो हम निश्चय ही जगत में सुसमाचार फैलाने के कार्य में विफल होंगे। इस प्रकार अध्याय के पद 23 में पौलुस फिर से इस तथ्य का उल्लेख करता है कि सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जा चुका है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, यीशु का फिर से आगमन तो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सुसमाचार संपूर्ण जगत में प्रचार न किया जाए, परंतु सुसमाचार प्रचार तो संपूर्ण जगत में किया जा चुका है और वह फल उत्पन्न करता है। सुसमाचार की महिमा यही है कि वह फल उत्पन्न करता है। और देखो, संसार में सुसमाचार जहां जहां स्वीकार किया गया वहां वहां उसके फल मनुष्यों तथा राष्ट्रों के जीवनों में दिखाई देते हैं, और वे राष्ट्र जहां अन्य धर्म राष्ट्रीय धर्म है वहां के नागरिकों के जीवन पर ध्यान दीजिए। मैं यहां मसीह यीशु के सच्चे सुसमाचार के विषय में कह रहा हूं, क्योंकि दुर्भाग्यवश कलीसिया एक संस्था होने के कारण संसार में मसीह यीशु के सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रही है। वह संस्था के रूप में धर्म मात्र ही रह जाती है और विश्व के धर्मों में से एक धर्म कहलाती है, क्योंकि वह अधिकांश समय मसीह यीशु के सुसमाचार का प्रचार नहीं करती। कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो इस धर्म रूपी कलीसिया के प्रभाव में आ गए हैं, परंतु वे सुसमाचार निमित्त लाभदायी नहीं है। परंतु वे राष्ट्र जो मसीह यीशु के सुसमाचार के प्रभाव में आए हैं, वहां के मनुष्यों के जीवन में आप सुसमाचार के फलों को देख सकते हैं। सुसमाचार का एक फल है स्वतंत्रता से प्रेम, अर्थात स्वाधीनता के प्रति प्रेम। कुछ राष्ट्रों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो परमेश्वर की आराधना के लिए स्वतंत्रता की खोज में थे, जिनमें प्रशासन न तो कलीसिया को निर्देश दे, न सहायता दे और न ही कलीसिया के सदस्यों से कर वसूल करे। वे एक राजकीय कलीसिया की खोज में कदापि नहीं थे। यूरोप में अंधकार का कारण है राजकीय कलीसियाएं। यूरोप के उन देशों में जहां राजकीय कलीसियाएं हैं, वहां कलीसिया की देखरेख सदस्यों से प्राप्त करों के द्वारा की जाती है। वहां आप देखेंगे कि कलीसिया का पतन हो रहा है, वह मर चुकी है। पहले जमाने में ऐसे मनुष्य थे जिन्हें मसीह यीशु के सुसमाचार के कारण स्वतंत्रता से प्रेम था, और उन्होंने उसके अनुकूल अपने राष्ट्र की स्थापना की, और यही कारण था कि स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता का प्रेम उनके लिए ऐसा महत्व रखता था। परंतु जैसे जैसे कलीसिया की गवाही समाप्त होती गई और सांसारिक बातें प्रवेश करती गई, वैसे वैसे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता खत्म होती जा रही है। मनुष्य स्वयं इसकी अनुमति दे रहा है, क्योंकि सुसमाचार का प्रभाव अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले कभी था, इसलिए हम अपने पूर्वजों की तरह स्वतंत्र नहीं रहे। सुसमाचार का वास्तविक फल है प्रेम, अर्थात अपने साथी की सराहना करना, अपने भाइयों से प्रेम करना। ऐसा प्रेम जो दया और भलाई के कार्यों में दूसरों के सामने प्रदर्शित किया जा सके। अब छठी आयत, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। यहां पौलुस बलपूर्वक कहता है, तुमने सच्चाई में परमेश्वर के अनुग्रह को सुना और पहचाना। यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को, जो सच्चा है, पहचाने। अगली आयत, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को, जो आत्मा में है, हम पर प्रकट किया। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यहां पौलुस कलीसिया के लिए जो पहला निवेदन अपनी प्रार्थना में करता है वह यह है कि वे संपूर्ण बुद्धि और आत्मिक समझ में परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान में परिपूर्ण हो जाएं। दूसरा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। पौलुस ने इफिसियों को पत्र लिखकर अवगत कराया कि परमेश्वर उनके लिए क्या था और उसने उनके लिए क्या क्या किया था, और तब उनसे कहा, तुम्हारा चाल चलन तुम्हारे उस बुलाहट के योग्य हो जिसके द्वारा तुम बुलाए गए हो। तुम परमेश्वर के संतान हो, इसलिए उसी प्रकार का चाल चलन रखो और उसी प्रकार जीवन व्यतीत भी करो। तुम्हारा चाल चलन प्रभु को सब प्रकार से प्रसन्न करने के योग्य हो, कि प्रत्येक भले काम में फलवंत होते हुए तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाएं। इसी उद्देश्य के लिए हमारा यह अध्ययन समर्पित है। आप परमेश्वर को सत्य में तब ही पहचान सकते हैं जब वो अपने वचन के माध्यम से स्वयं को आप पर प्रकट करता है। परमेश्वर की पहचान का एकमात्र स्रोत बाइबल है, इसलिए परमेश्वर को पहचानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है, क्योंकि अपने वचन के द्वारा ही उसने सदैव स्वयं को मनुष्य पर प्रकट किया है। अब अगली आयत, ताकि आप उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। अधिकांश समय हमारा धीरज और सहनशीलता आनंद के साथ नहीं होता है। जब परमेश्वर हमसे प्रतीक्षा करवाता है तो हम एक प्रकार की शिकायत के साथ और कुड़कुड़ाते हुए हम कहते हैं, मैं तो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूं, और रोनी सूरत बना लेते हैं। हम आनंद के साथ धीरज धरने की अपेक्षा विलाप करने लगते हैं। 12वीं आयत, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हूं। पौलुस इफिसियों की पत्री में भी लिखता है, पवित्र लोग जो ज्योति में हैं। यहां इन दोनों कलीसियाओं को लिखे पत्रों में समकालीन होने का प्रमाण है, और यही कारण है कि इन दोनों पत्रों के विचारों में भी समानता पाई जाती है। परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें इस मीरास में सहभागी होने के योग्य समझा। पौलुस यहां एक बार और प्रार्थना करता है कि इफिसियों की कलीसिया के सदस्य जान लें कि परमेश्वर का मीरास क्या है। एक दूसरी बात यह है जिसे उसने वास्तव में परमेश्वर की आशीष कहा, वो ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। 13वीं आयत, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यही मन परिवर्तन है, अंधकार के अधिकार से अर्थात हमारे पापों के दासत्व से, जो शैतान का अधिकार कहलाता है, जिसके हम कभी अधीन थे, छुड़ाए जाना। अब मुक्त कराकर परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज में ले आया है। हम धर्मशास्त्र में परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, और हम प्राय सोचते हैं कि यह एक आने वाला राज्य है। बहुतों का ऐसा मानना भी है, परंतु आपके लिए यह एक वर्तमान राज्य है, और आपके लिए यह एक वर्तमान अनुभव है। आप स्वयं देख सकते हैं कि जिस क्षण आप मसीह यीशु के समक्ष घुटने टेक कर उसे अपना राजा एवं प्रभु स्वीकार करते हैं, उसी क्षण आप उसके राज्य के अंग बन जाते हैं। मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। मैंने अपना जीवन एक निष्ठावान नागरिक और सेवक के रूप में समर्पित कर दिया है, क्योंकि अब वह मेरा राजा है, इसलिए मैं उसके राज्य की प्रजा हूं। इस प्रकार मुझे अंधकार के आधिपत्य से निकालकर उस राज्य में लाया गया है। 14वीं आयत, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यहां फिर से कुलुसियों के पत्री के अध्याय 1 की भव्य आशीष का उल्लेख है, छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा। अगली आयत, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। पौलुस हमें यीशु के बारे में अनेक सच्चाइयों को बता रहा है। स्मरण रखिए कि ग्नोस्टिक तथा उनकी झूठी शिक्षाएं जो कुलुसियों की कलीसिया में प्रवेश कर रही थी, यीशु के परमेश्वर होने का खंडन करती थी। इसलिए यहां पौलुस यीशु की सर्वोच्चता के बारे में बताता है, वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यूहन्ना के अध्याय 1 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकलौते की महिमा। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था। इब्रानियों अध्याय 1 में वह परमेश्वर की महिमा का तेज या महिमा की आभा और उसका प्रकट रूप है। यीशु परमेश्वर का रूप है अर्थात अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। वह संपूर्ण सृष्टि में पहलौटा है, या जैसे कि यूनानी संस्करण में व्यक्त है कि सबसे पहले। यहां पहले का अर्थ अंकों में 1, 2 या 3 से नहीं, इसका वास्तविक अर्थ यह है कि वह सबसे श्रेष्ठ है, वह संपूर्ण सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। 16वीं आयत, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उत्पत्ति अध्याय 1 से मालूम होता है, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की। यहाँ परमेश्वर के लिए उपयोग किया गए शब्द है इलोहीम, जो बहुवचन में है। ये सत्य है कि लेखक ने परमेश्वर की व्याख्या बहुवचन से की है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर दो से अधिक है, क्योंकि इसका एक वचन एल और बहुवचन इलोई है। और मेरा विश्वास है कि यहाँ पर त्रिएकता के बारे में संकेत है। जब मनुष्य की रचना का समय आया तो परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। उसने यह नहीं कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाऊंगा, परंतु हम अर्थात पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की दिव्य सम्मति से मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उसकी समानता में बनाया गया। इस प्रकार यूहन्ना के अध्याय एक में हम देखते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यीशु सृष्टि करता है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। सब कुछ का अर्थ है आकाश और पृथ्वी की सब वस्तुएं। दूसरे शब्दों में संपूर्ण जगत उसके द्वारा सृजा गया है। वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष हैं तथा अप्रत्यक्ष हैं, वह दृश्यमान भौतिक संसार जो आप देखते हैं तथा अदृश्य संसार जिसे आप नहीं देखते अर्थात आत्मिक संसार, स्वर्गदूत तथा आत्माओं के विभिन्न वर्ग जिन्हें यहाँ राज्य एवं अधिकारी या प्रधानता या शक्ति कहा गया है, सब कुछ उसी के द्वारा तथा उसी के लिए बनाया गया। इसलिए वह केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं वरन उसी के लिए सारी वस्तुएं सृजी गई हैं। सब कुछ उसके द्वारा सृजा गया और उसके लिए सृजा गया। स्वर्गदूत, संपूर्ण जगत, जगत की सब वस्तुएं उसी के लिए सृजी गई हैं और इसमें आप भी शामिल हैं। आप उसकी इच्छा तथा उद्देश्य के निमित्त सृजे गए हैं। मनुष्य प्राय इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। वे विरोध करते हैं क्योंकि यह स्वतंत्रता परमेश्वर ने स्वयं उन्हें दी है। क्योंकि जब उसने आपकी रचना की तब उसने आप में स्वतंत्र इच्छा एवं चयन करने की क्षमता को भी सृजा। आप उसके स्वरूप में सृजे गए हैं। परमेश्वर में आत्मनिर्णायक व्यक्तित्व है और इसी रूप में उसने आपकी सृष्टि की अर्थात आपको भी आत्मनिर्णय की या चयन की क्षमता प्रदान की है। आपके साथ सार्थक सहभागिता रखने के लिए परमेश्वर को ऐसा करना आवश्यक था। मनुष्य की शरीर रचना तथा परमेश्वर की बुद्धि का अध्ययन करते हुए मुझे समझ में आया कि परमेश्वर हमें जटिल रोबोट बना सकता था और उन समस्त कार्यों को जिन्हें हम मानव रूप में पूर्ण कर सकते हैं करने में समर्थ बना सकता था, परंतु अर्थपूर्ण प्रेम एवं अर्थपूर्ण संगति के लिए रोबोट सक्षम नहीं होते। इन गुणों के लिए आपको चुनने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए परमेश्वर ने हमारी रचना में चयन की क्षमता डाली और यदि आप उस चयन की स्वतंत्रता का सदुपयोग करके उसके लिए जीवन व्यतीत करते हैं तो आपका जीवन समृद्ध होगा, परिपूर्ण होगा तथा संतोषजनक होगा। यदि आप अपने चयन की स्वतंत्रता का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो आपका जीवन सारहीन, फलहीन तथा निराशाजनक होगा। प्रभु यीशु मसीह समस्त सृष्टि में श्रेष्ठ या पहलौटा है, आदि में परमेश्वर। संसार, सितारों, ग्रहों और किसी भी प्रकार के जीवन से पहले उसका अस्तित्व था। इससे पूर्व की स्वर्गदूत थे वह था। वह अनादि है। वह सदैव अस्तित्ववान था। वह स्वयं में अस्तित्व रखता है। वह समस्त सृष्टि से पहले का है और समस्त सृष्टि उसमें स्थिर है। यूनानी भाषा में इसका अर्थ है स्थिर की गई है। अणु एवं बिजली के नियमों के खोज के प्रकाश में यह व्यक्तित्व बड़ा ही दिलचस्प है। बिजली के संबंध में कोलंब नामक एक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि बिजली के प्रवाह की दो अलग धाराएं एक दूसरे को खींचती है, जिसके कारण बल्ब जलता है और पंखा चलता है, परंतु एक जैसी धाराएं एक दूसरे से दूर भागती है। इसलिए यदि एक जैसी धारा को बल्ब या पंखे के दोनों सिरों में लगाया जाए तो वह काम नहीं करते। इसी प्रकार मैं आपको चुंबक का एक उदाहरण देता हूं। हमारे पास एक ऐसा छोटा बक्सा था जो कफन की तरह लगता था। उसमें एक तरह का गुड्डा था। उसे ऐसी बुद्धिमानी से बनाया गया था कि आप उस गुड्डे को खड़ा कर सकते थे। उस बक्से में एक चुंबक ऊपर नीचे फिसलता था। जब वह चुंबक पैरों की ओर होता था तब वह गुड्डा लेटा रहता था, और जब वह चुंबक सिर की ओर आ जाता था तब वह गुड्डा बाहर आ जाता था, क्योंकि चुंबक के दोनों सिरे एक समान होने के कारण वे एक दूसरे को धक्का देते थे। ऐसी स्थिति में कोई कितनी भी कोशिश कर ले वह उस गुड्डे को कभी लिटा नहीं पाता था। यही एक अद्भुत बात है। यही तो वह प्रकृति का नियम है जिसे कोलम नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया। आणविक रचना के सिद्धांत के अनुसार अणु में जो प्रोटॉन होते हैं उनमें से दो प्रोटॉन जुड़े रहने के लिए लगभग 5 से 10 किलोग्राम के तुल्य की शक्ति की आवश्यकता होती है। एक अणु में अनेक प्रोटॉन होते हैं, और आश्चर्य की बात तो यह है जो वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते कि ऐसा क्या रहस्य है जो प्रोटॉन को जोड़े रखता है। यह कोलम के सिद्धांत के विपरीत है। कुछ समय पूर्व वैज्ञानिकों ने कल्पना की थी कि संभव है कि वे एक प्रकार के आणविक गोंद से जुड़े रहते हैं, परंतु उसे निराधार घोषित कर दिया गया। इसका वास्तविक उत्तर बाइबल में पाया जाता है, उसी के द्वारा सब कुछ स्थिर है। यदि परमेश्वर पल भर के लिए भी अपनी पकड़ छोड़ दे तो संपूर्ण जगत एक विशाल विस्फोट में बदल जाएगा और सब कुछ नाश हो जाएगा। हे प्रभु, कृपया पकड़े रहना। अगली आयत, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे मनुष्य हर जगह पाए जाते हैं जो कलीसिया रूपी देह के सिर का स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे विचार में कलीसिया की एक दुर्बलता है कि यहाँ आधिपत्य के लिए संघर्ष होता है और कलीसियाएं पद प्रतिष्ठा की लालसा से ग्रस्त होती जाती हैं। ऐसे व्यक्ति कलीसियाओं पर वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। एक सच्चा ईश्वर भक्त पास्टर कभी भी अध्यक्षता की लालसा नहीं रखेगा। वह पोप बनना भी नहीं चाहेगा। वह तो वही बनना चाहेगा जो परमेश्वर उसे बनाना चाहता है। यदि वह वास्तव में परमेश्वर का भक्त है तो सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर ने उसे जो बनाने के लिए बुलाया है उससे अधिक आकांक्षा उसमें नहीं होगी। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि कलीसियाओं में ऐसे मनुष्य भी हैं जो पद प्रतिष्ठा की लालसा से ग्रस्त होते हैं, और वे कलीसिया में प्रमुख के स्थान एवं प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसी अवस्था को देखना हृदय विदारक होता है, क्योंकि मसीह वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा। अब यीशु से पहले और भी लोग मरे हुओं में से जी उठ चुके हैं, परंतु यीशु को यहां पर पहलौटा कहने का अर्थ यह है कि वह कभी भी मरेगा नहीं। उनके पहले जितने भी जी उठ चुके वे फिर से मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन वह अनंत जीवन के लिए जी उठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यही परमेश्वर का उद्देश्य एवं योजना है कि प्रत्येक क्षेत्र में यीशु को प्रधानता प्राप्त हो, सब बातों में। इसमें आप भी सम्मिलित हैं। अब प्रश्न यह है, क्या परमेश्वर आपके जीवन में प्रधानता से राजी करता है? क्या उसे आपके जीवन में प्रधानता प्राप्त है? आप देखें, मसीह के लिए परमेश्वर का उद्देश्य एवं योजना यही है कि वह हम में से प्रत्येक के जीवन में प्रधानता का स्थान प्राप्त करे और वह हमारे जीवन में अन्य किसी भी वस्तु से प्रथम ठहरे। अर्थात मसीह यीशु के स्थान से ऊपर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ कहना मात्र ही काफी नहीं कि ओ हाँ मसीह प्रधान है, परंतु ये यथार्थ में होना अनिवार्य है। मुझे डर है कि जब वास्तविकता की बात आती है, जब इस बात को जीवन में लागू करने की बात आती है, तब वे अनेक जो मसीह विश्वासी होने का दावा करते हैं अपने जीवन के सत्य को छिपा नहीं पाते कि उनके जीवन में प्रभु सर्वोच्च स्थान पर नहीं है। हम उन्हें देखते हैं, हम स्वयं को देखें। आप जानते हैं कि मुझे उनका लेखा नहीं देना है, मुझे अपने स्वयं का लेखा देना होगा। जब मैं परमेश्वर के समक्ष खड़ा होऊंगा तो मुझे अपना लेखा देना होगा और मैं परमेश्वर को अपना लेखा दूंगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मैं अन्यों के समर्पण का निरीक्षण करने की अपेक्षा स्वयं के समर्पण का मूल्यांकन करूं। मैं अन्यों की हार को नहीं अपितु स्वयं की हार को देखूं और स्वयं का न्याय करूं। ये हम में से प्रत्येक के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है कि हम में से प्रत्येक स्वयं को देखे और स्वयं का न्याय करे, क्योंकि यदि हम स्वयं का न्याय करेंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा। अब 19वीं आयत, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। यह पद हमारी बुद्धि की समझ से बाहर है। पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें, अर्थात मसीह में, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करे, या परमेश्वर दैहिक रूप में हमारे प्रभु में वास करता है। इसको हम अध्याय 2 में समझ पाएंगे कि हम सिद्ध कैसे किए जाते हैं। 20वीं आयत, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। इस प्रकार यीशु ने परमेश्वर के साथ मनुष्य के मेल को संभव किया। मनुष्य परमेश्वर के साथ संघर्ष में था, मनुष्य परमेश्वर से विद्रोह कर रहा था। हम सब परमेश्वर से विद्रोह कर रहे थे क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे थे, हम अपने ही चाल चलन में थे, हम अपनी शारीरिक एवं मानसिक लालसाओं के कारण परमेश्वर से युद्ध कर रहे थे, और इस प्रकार हम परमेश्वर के नियमों तथा आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे। परंतु यीशु ने क्रूस पर बहाए अपने लहू के द्वारा एक ऐसी धार्मिक नींव रखी जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सके और जिसके द्वारा परमेश्वर के साथ मेल संभव हो सके। वह समस्त वस्तुओं का स्वयं में मेल कराता है। इसलिए हमें कहा गया है, इसलिए तुम परमेश्वर से मेल रखो, परमेश्वर के साथ युद्ध मत करो, परमेश्वर से मेल करो। और सब वस्तुओं का मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर से मेल कराया गया है, चाहे पृथ्वी पर की हो या स्वर्ग की। तुम जो एक समय परमेश्वर से दूर थे, तुम जो अपने मन के द्वारा तथा दुष्ट कर्मों के द्वारा परमेश्वर के बैरी थे, अब तुम्हारा उससे मेल कराया जा चुका है। 22वीं आयत, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। देखिए, मसीह यीशु में अपने विश्वास के द्वारा मेरे समस्त पाप एवं अधर्म क्षमा हुए हैं। जब जब यीशु मुझे पिता के सम्मुख प्रस्तुत करता है, तब तब वह मुझे निर्दोष एवं निष्कलंक तथा पवित्र बनाकर प्रस्तुत करता है। यहूदा की पत्री में हम यही पढ़ते हैं, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। ओह, क्या आप जानते हैं कि मसीह यीशु ने आपके लिए क्या क्या उपलब्ध करवाया है? आपके पापों की तथा अधर्म की संपूर्ण क्षमा। उसने ये केवल इसीलिए किया क्योंकि आप मसीह में हैं। परमेश्वर आपको पवित्र, शुद्ध एवं धर्मी मानता है क्योंकि मसीह की धार्मिकता आपके लेखे में आ गई है, आप में जड़ दी गई है, और ये केवल आपके उस विश्वास के कारण है जो आप मसीह में रखते हैं। ये आपके द्वारा की गई किसी बड़े बलिदानों के द्वारा नहीं, परंतु मसीह यीशु में आपके सरल विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने आपको न्यायोचित माना है। आज परमेश्वर मुझे एक धर्मी के सदृश मानता है। मैं तो स्वयं अपने आप को इस रूप में नहीं देखता हूं। मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे अपने समस्त दोष दिखाई देते हैं, मुझे मेरी विफलताएं दिखाई देती हैं, मुझे मेरे दोष दिखाई देते हैं। परंतु परमेश्वर मुझे यीशु के माध्यम से देखता है, और जब वह मुझे यीशु के माध्यम से देखता है तो वह मुझे निर्दोष, पवित्र और निष्कलंक ही देखता है। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मसीह में अपनी उस पदवी के लिए कितना आभारी हूं, उसके कारण परमेश्वर मुझे सिद्ध मानता है। अब 23वीं आयत, यदि तुम विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। यहां फिर से उस तथ्य का उल्लेख है कि सुसमाचार समस्त सृष्टि को सुनाया गया है। पहली सदी की कलीसिया सुसमाचार के प्रचार में पूरी तरह से लगी हुई थी। अब अगली आयत, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूं। धर्मशास्त्र का ये अंश समझना अत्यधिक कठिन है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं स्वयं इस पद को संपूर्ण तौर से नहीं जानता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस कह रहा हो कि किसी प्रकार वो मसीह के दुखों को अपने देह में पूर्ण कर रहा है जो उसके देह अर्थात कलीसिया के निमित्त है। ये विचार तब ही स्पष्ट हो सकता है जब हम कलीसिया के साथ यीशु के संबंधों को समझें या अपने साथ यीशु के संबंधों को समझें। मसीह यीशु में विश्वास रखने के कारण आपकी जो भी निंदा होती है तो वो वास्तव में यीशु के प्रति निंदा है। जो भी उत्पीड़न आप मसीह यीशु के कारण सहते वो उत्पीड़न यीशु की ओर किया जाता है। पौलुस ने जान लिया कि उसकी ताड़ना पथराव कष्ट यातना तथा उसका बंदी बनाया जाना सब कुछ मनुष्य का मसीह यीशु से उस बैर के कारण था। इसलिए वो मसीह यीशु के कारण कष्ट उठा रहा था। वो मसीह यीशु के कारण ही बंदीगृह में था। वो वास्तव में मसीह यीशु के कष्टों को सहन कर रहा था या उसके अपमान को सहन कर रहा था। ये वे बैर की भावनाएं थी जो मनुष्य के मन में मसीह यीशु के विरुद्ध थी। ये वह घृणा थी जो मनुष्य के मन में यीशु के विरुद्ध थी। पौलुस इसे अपना सौभाग्य मानता है कि वह उनको उठा रहा था। मैं आनंद मनाता हूं कि मैं यीशु पर आरोपित इन बातों को उठा सकता हूं और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यीशु के कष्टों की पूर्ति करूं, अर्थात यीशु के प्रति मनुष्य का बैर मुझ पर निकाला जाए और कि मैं उन्हें सहन करने के सक्षम हो जाऊं। यीशु ने हमारे साथ ऐसी ही पहचान बना रखी है कि वह आप ही हमारे साथ इन कष्टों को उठाता है। याकूब की पत्री पहले अध्याय और दूसरे पद में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं एवं प्रलोभनों में पढ़ते हो तो इसे आनंद की बात समझो। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पत्रस ने अपनी पहली पत्र में कहा। मत्ती 5:11 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यत वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अर्थात मसीह के कष्टों को अपने में पूरा करना। स्वाभाविक मनुष्य अब भी यीशु से घृणा करता है, और जब आप यीशु के प्रतिनिधि के रूप में उसके सामने होते हैं तो आपको उस व्यक्ति के अशिष्ट व्यवहार को सहन करना होता है जो वास्तव में आपके साथ नहीं परंतु यीशु के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं। प्रेरित गण इस दुख उठाने को आनंद की बात मानते थे क्योंकि वे इसमें समर्थ थे। उनका आनंद इसमें था कि वे इस कष्ट को मसीह यीशु के निमित्त उठाते थे, इसलिए हमें इसे व्यक्तिगत नहीं मानना चाहिए। हम प्राय इतने अधिक संवेदनशील होते हैं कि किसी की बात को अपने ऊपर बड़ी आसानी से ले लेते हैं, जैसे कि वह हम ही पर आरोपित की गई हो। नहीं, वह तो वास्तव में मसीह यीशु पर आरोपित की जा रही है। मैं तो उसका प्रतिनिधि होने के कारण इन सब बातों को भोगता हूं। यदि मेरा दृष्टिकोण ऐसा हो तो मैं आनंद मना सकता हूं। प्रभु, तूने मुझे अपने कारण कष्ट सहन करने के योग्य माना, जिस प्रकार की प्रेरितों के काम के अध्याय 4 में प्रेरितों ने माना था। प्रभु, तूने हमें दुख उठाने के योग्य माना, इसीलिए अगली आयत में, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने यीशु में पूरी किए देता हूं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। कहने का अर्थ यह है कि पौलुस परमेश्वर की योजना के अनुसार सेवक बना ताकि परमेश्वर के वचन को पूर्ण करे। 26वीं आयत, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। परमेश्वर का एक अलौकिक भेद यह है कि मसीह आकर आप में वास करता है। हमें लाओस के राजा को सुसमाचार सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे बात करते समय मुझे यह ध्यान आया कि वह महात्मा बुद्ध के अनुयायी है। बुद्ध ने यह शिक्षा दी और बौद्ध धर्म भी यही सिखाता है कि मनुष्य की समस्याओं और बुराई का मूल भौतिक संसार है जिसमें देह भी है, इसलिए मनुष्य को इस संसार से वैराग ले लेने का प्रयास करना चाहिए। स्वर्ग एक ऐसी अवस्था है जहां भौतिक संसार को छोड़कर आत्मा में वास किया जाता है जिसका संसार से कोई संबंध नहीं। दूसरे शब्दों में भौतिक संसार से संपूर्ण वैराग्य ले लेना ही निर्वाण है। यही वास्तव में बौद्ध धर्म के मानने वालों का लक्ष्य होता है, वैराग्य तथा उपवास आदि के द्वारा देह का इनकार करें ताकि वह संसार से पूर्ण रूप से अलग होकर पूर्ण आत्मा में परिवर्तित हो जाएं और यही उनका निर्वाण होता है। यदि इस जन्म में आप सफल न हुए तो दूसरे जन्म में अवसर होगा और फिर तीसरा जन्म, और इस प्रकार सफल होने तक पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा। ये निश्चय ही रोचक विषय है कि एक मनुष्य से आरंभ करके ये करोड़ों मनुष्य कहां से आ गए, इन सबके पुनर्जन्मों के लिए आत्माएं कहां से आ गई। अभी तो और भी अनेक लोगों का आगमन होना है क्योंकि हमने तो आज की तुलना में बहुत कम आत्माओं से आरंभ किया था। देखिए कि आज संसार में हमारे पास कितनी अधिक आत्माएं हैं। आज तक जितने लोग पैदा हुए उनमें से सिर्फ 10% लोग आज जीवित हैं। यह तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को गलत साबित करती है। यह जानकर कि वे बौद्ध विश्वास से हैं, मैंने कहा कि बाइबल की शिक्षा के अनुसार मनुष्य मूल रूप में आत्मा है जो देह धारण करती है और उसमें चेतना होती है, परंतु यदि मनुष्य अपने जीवन का केवल शारीरिक भाग ही व्यतीत करता है तो वह अपने जीवन को उस तरह से व्यतीत नहीं करता जो परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया हुआ है। परमेश्वर निश्चय चाहता है कि हम अपने जीवन का आत्मिक पक्ष भी जिए। इसलिए यदि मेरी देह का मुझ पर अधिकार हो और मैं शारीरिक लालसाओं से ग्रस्त रहूं तो मैं परमेश्वर से विरक्त जीवन व्यतीत करता हूं, परंतु परमेश्वर की संगति में जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे आत्मा में जीवन व्यतीत करना आवश्यक है, अर्थात आत्मा के अधीन जीवन। मैं जानता था कि बौद्ध ने यही शिक्षा मूल रूप से उन्हें दी थी। तब मैंने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में अनेक धार्मिक अगुवे हुए हैं जिन्होंने मनुष्य के आत्मिक जीवन व्यतीत करने के विषय में अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का विवेचन किया है, परंतु समस्या यह है कि सत्य की शिक्षा देकर मार्ग तो उन्होंने दिखा दिया किंतु मनुष्य को उन मार्गों में चलने के लिए सामर्थ्य प्रदान नहीं की, जो प्राय निराशा का कारण सिद्ध हुआ है। मैं उनकी शिक्षाओं को अवश्य सुनता हूं और मैं उनसे सहमत हूं कि मैं दैहिक जीवन व्यतीत करना नहीं चाहता, मैं परमेश्वर की संगति में रहना चाहता हूं, परंतु जब मैं इस जीवन निर्वाह में असमर्थ होता हूं तो मैं निराश हो जाता हूं। इस कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु को भेजा कि मेरे पापों के लिए वह अपना जीवन बलिदान करे और मेरे पापों को क्षमा करे। उसने एक और कार्य किया, वह मृतकों में से जीवित हुआ और उसने कहा कि मैं आकर तुम में वास करूंगा और मेरे वास करने से तुम्हें इस मार्ग में चलने की सामर्थ मिलेगी। तुम में ये सामर्थ नहीं है, तुम स्वयं में होकर यह कार्य नहीं कर सकते हो, मैं तुम में वास करके तुम्हें इस कार्य को करने की सामर्थ प्रदान करूंगा। मैंने कहा कि मसीही विश्वास और विश्व के अन्य धर्मों में यह एक प्रमुख अंतर है। मसीह विश्वास में सामर्थ मसीह यीशु द्वारा प्रदान की जाती है जो हम में वास करता है। यह मात्र मार्ग की ओर संकेत ही नहीं करता, वरन आगे बढ़ने की क्षमता एवं सामर्थ का दान भी देता है। भेद वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, वही हमारी आशा है। मनुष्य स्वयं के प्रयास में ऐसा नहीं कर सकता, परंतु मसीह जो मुझ में वास करता है मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है। अब 28वीं आयत, जिसका प्रचार करके हम हरेक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हरेक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हरेक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। सेवा का यही एकमात्र उद्देश्य है कि आपको मसीह में सिद्ध करके उपस्थित किया जाए। वर्षों तक मेरी सेवा का समर्पण यही था कि मनुष्यों को मसीह यीशु में लाना, परंतु उन्हें सिद्ध करके उपस्थित करना नहीं था। सुसमाचार प्रचार मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, एक महान कार्य है, परंतु मेरी कलीसिया सुदृढ़ नहीं थी। पौलुस की लालसा थी कि वह शिक्षा दे, परंतु उसका उद्देश्य था कि विश्वासियों को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करे। 29वीं आयत, और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। ये थी अंतिम आयत। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम तुझे मसीह यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरा इकलौता पुत्र जो इस संसार में पिता को प्रकट करने आया, जो पिता का प्रतिरूप था, जो इस विशाल ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। ये कैसा अचंभा है कि वह इस ग्रह पृथ्वी पर चला, उसने मनुष्यों के साथ खाया, वह मनुष्यों के साथ सोया, उसने मनुष्यों से बातें की, उसने मनुष्यों को स्पर्श किया। हे प्रभु, हम देह धारण के भेद पर कैसा अचंभा करते हैं कि मसीह में परमेश्वर संसार से मेल कर रहा था। इससे भी महान भेद यह है कि वही यीशु जो मरकर फिर से जीवित हो गया, उसी ने पृथ्वी की सृष्टि की थी और जगत को स्थिर भी किए हुए है। वह अब हमारे हृदयों में वास करता है और हमारे जीवन को सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रभु, क्या ही श्रद्धा की बात है कि तू हम में वास करता है। होने दे कि हमारी देह तेरी इच्छा पूरी करने के लिए एक माध्यम बन जाए। पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। जब आप सत्य को ग्रहण कर रहे हैं तो प्रभु आपको आशीष दे तथा सहायता प्रदान करे कि यह सत्य आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाए और आप परमेश्वर के संतान होने के कारण उस महान सामर्थ्य का अनुभव करें जो आप में विद्यमान है, और वह है परमेश्वर का मर्म, हम में वास करने वाला मसीह जो महिमा की आशा है। उसका सामर्थ्य आपके जीवन में बल और जय लाएगा। परमेश्वर उस सामर्थ्य का प्रदर्शन आपके जीवन के उस पहलू पर करेगा जिसमें आप लंबे समय से ठोकर खा रहे हैं। आप उसकी महिमा एवं वास्तविक जय का अनुभव करें और आपको बोध हो जाए कि आप में वास करने वाला मसीह आपको आशीष देता है और आपके साथ रहता है। यीशु के नाम में आमेन।